ओम शांति। आज सुंदर सुरम्य शाम के समय हमारी भट्टी में विशेष शांतिवन से राजयोगिनी गीता बहन जी पधारे हैं। हम एक हाथ की ताली से आपका दिल से स्वागत करते हैं। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आपका नाम याद करते ही गीता ज्ञान भी याद आ जाता है। बाबा ने सत्य गीता ज्ञान जो दिया, उसने उसको स्वयं ने अपने जीवन में भी स्वरूप में लाने का पूर्ण प्रयास किया और दूसरों को भी उसी ज्ञान का स्वरूप बनने के लिए हमेशा प्रयासी रहे। मूलभूत बात जो बाबा कहते हैं, स्थित प्रज्ञ स्थिति, हर परिस्थिति में समानता, ऐसी सुंदर शक्तिशाली स्थिति को आपने अपने अभ्यास द्वारा, आध्यात्मिक पुरुषार्थ द्वारा प्राप्त की है। बहुत ही छोटी आयु में ही आपको बाबा का ज्ञान प्राप्त हुआ, 14 साल की आयु में, और पढ़ाई के दौरान आपने शिक्षाओं को साथ साथ पढ़ना भी चालू रखा और गुजरात के सूरत सेवा केंद्र से आपको ज्ञान मिला। लौकिक पढ़ाई में भी आप मेघावी छात्रा रही। साउथ गुजरात के मैट्रिक बोर्ड में आपका फर्स्ट नंबर आया था, बड़ी खुशी की बात है। वही हमें सिद्ध करके बताती है आपकी बुद्धि की शक्ति क्या होगी। बाद में पढ़ाई पूरी करने के बाद में आपने जीवन को समर्पित किया, लगभग 1972 में। समर्पित करने से पहले भी आप बाबा का ज्ञान अच्छी तरह सुनाने में माहिर थे। बहुत अच्छा चिंतन करके जो विषय है उसी पर आप स्पष्ट करने की विशेषता आप में भरी है। तो गुजरात में ही आपने सूरत, भरूच, बड़ौदा, अहमदाबाद और भावनगर में आपने 14 साल यही बाबा के ज्ञान को ईश्वरीय सेवा में ला करके करीब 14 साल आपने वहां भी सेवाएं करने के बाद, जब से ज्ञान सरोवर हमारा नवनिर्मित भवन ज्ञान सरोवर का बना, तब से ही आपने वहां 2010 तक आवास निवास, रिसेप्शन और इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन में सेवाएं दी। शांतिवन का भी नीचे फैलावा होता गया। बाबा के बच्चे ज्यादा संख्या में, हजारों की संख्या में नीचे भी आते थे। आपने वहां भी आज तक बहुत अच्छी सेवाएं करते हुए, जिसमें भट्टी की क्लासेस है, टीचर्स बहनों की भट्टी हो या गृहस्थ में रहने वाले हो या कुमार कुमारिया हो या कोई भी प्रवचन भी हो, कॉन्फ्रेंस आदि का भी आयोजन किया जाता है। यहाँ तीनों स्थानों पर आप चक्कर लगाते हो, पांडव भवन, ज्ञान सरोवर और शांतिवन। तीनों स्थान पर जब भी जहां भी सेवा की आवश्यकता है, आप आए हुए भाई बहनों को अपनी मधुर वाणी से, गुह्य वाणी से संतुष्ट करके शक्तिशाली बनाकर अनुभव कराते हो। बाकी आपने सेवा के दौरान कई प्रकार के कंपेन है, वो अभियान है, उसमें भी आपने सेवाएं दी है। थोड़े साल पहले मेले आदि भी बहुत होते थे, तभी भी आपने बहुत मेले आदि का भी आयोजन किया और जो भी हमारे प्रोग्राम्स होते रहते और जो विंग्स है हमारे बिजनेस इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज विंग है, उसके भी आप हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हो। खास सेल्फ मैनेजमेंट की ट्रेनिंग भी आप देते हो। तो इस प्रकार से कई प्रकार की सेवाओं में आपने बहुत ही इंटरेस्ट लेकर के उसकी चिंतन स्टडी करके बाबा का ज्ञान सब भाई बहनों के सामने, चाहे नए हो या पुराने हो, सबके सामने रखने की बहुत अच्छी विशेषता है। इसलिए आप बहुत कहेंगे कि प्रवक्ता या वक्ता हो, सब पर अच्छे अनुभव कराने वाले हो, सब पर अच्छी इम्प्रेशन आपकी छाप आप माइंड पर हर एक के ऊपर होती है। आज हमने भी आपका लाभ लेने के लिए, देने के लिए यह आमंत्रित किया आपने यहाँ करके। सभी भाई बहनों को बहुत ही अच्छी मनसा निराकारी, वाचा में निर्विकारी और कर्मणा में निरहंकारी, इस विषय पर आप स्पष्टीकरण करेंगे। बाद में योग भी कमेंट्री से कराएंगे। आपके लिए यही कहूंगी, जिसका नाम ही आपकी पहचान है, जिनका जीवन बेमिसाल है, जो दिव्य गुणों की खान है और बेहद यज्ञ की आप शान हो, ऐसे विशेष आत्मा को आज हम इस भट्टी में स्वागत करते हुए बहुत ही खुशी का अनुभव करते हैं। अभी मैं नम्र निवेदन करती हूँ कि आप इस विषय पर सबके सामने आपके विचार रखें। ओम शांति।
ओम शांति। थोड़ा बहने आगे हो जाओ ताकि लेट आने वाले पीछे बैठे, आगे आगे आ जाए, भाई भी थोड़ा सा। हिंदी समझते हैं ना सभी? हाँ? अच्छा अच्छा ओम शांति का ट्रांसलेशन क्या है? हाँ, यूनिवर्सल है ना, यूनिवर्सल शब्द है, सभी भाषा वाले बाबा के बच्चे जानते हैं। मधुबन का ट्रांसलेशन क्या है? मधुबन, वो भी सब जानते हैं, बाप दादा है ना, टोली, कितने शब्द है जो बाबा के सभी बच्चे, कोई भी भाषा वाले हो, सब समझते। इसमें बिदर के भाई बहने हाथ ऊपर करे, बहुत अच्छे, और काकीनाड़ा के भाई बहने, बहुत अच्छे। आप सभी का भी स्वागत है। मधुबन की तपोभूमि में खास आप सभी आए हैं, है तपोभूमि, और हम सभी भी योगी आत्माएं हैं। मधुबन की भूमि में हम सहज योगी, स्वतः योगी, स्थिति का अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि मधुबन किसका है? मधुबन किसका है? बाबा का है ना, कोई व्यक्ति का नाम नहीं। और इस भूमि पर आदि पिता ब्रह्मा बाबा ने, है ना, जगदम्बा माँ मम्मा ने और आदि रत्नों ने तपस्या की। तो नेचुरली इस भूमि के कण कण में बाबा का अनुभव हमें होता है। प्यारे ब्रह्मा बाबा ने जीवन भर शिव बाबा का जो सत्य ज्ञान सुना समझा और जीवन भर जो पुरुषार्थ किया, और अपनी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त किया, तो जीवन भर के पुरुषार्थ का सार जो बाबा ने हम बच्चों को बताया वो कौन से तीन शब्द जो आज का विषय है अभी का, निराकारी निरहंकारी निर्विकारी। हम सभी का भी लक्ष्य क्या है, हम भी ब्रह्मा बाबा को फॉलो कर रहे हैं, बाप दादा को फॉलो कर रहे हैं, हम सबका भी लक्ष्य यही है कि बाप समान बनना है, यही लक्ष्य है ना, कि एक दो के समान बनना है। क्या लक्ष्य है? बाप समान बनना है। और किसको न देखना है न फॉलो करना है, सी फादर और फॉलो फादर, यही बाबा ने हम बच्चों को सिखाया है। बेशक बाबा के अनेक महान बच्चे हैं जो अपने आप में विशेष है, हमें सबसे विशेषताएं सीखनी है, ग्रहण करनी, लेकिन हम सबके रोल मॉडल हैं ब्रह्मा बाबा। आदर्श के रूप में हमारे सामने ब्रह्मा बाबा है। और शिव बाबा ने जो ज्ञान दिया है, अगर पूरे ज्ञान का सार दो बातों में बताना हो तो आज भी बाबा ने कहा अशरीरी भव और मन मना भव। दो मुख्य पुरुषार्थ जिसके लिए जीवन भर हम पुरुषार्थी हैं, वो ऐसी मूलभूत बातें हैं जो रोज बाबा अनेक बार रिवाइज करते हैं, अपने को आत्मा समझो और मुझ बाप को याद करो। यही हम सबका पुरुषार्थ है। पूरे ड्रामा को भी सामने रखते हैं तो द्वापर युग में पहली भूल कौन सी की, जिसके कारण उतरती कला हुई, पहली भूल कौन सी? अपने आप को भूले। सबसे पहली भूल खुद को भूले। बाबा कहते हैं ना कि शरीर के प्रकृति, शरीर क्या है? प्रकृति है। तो प्रकृति और समय के संसर्ग में रहते 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 आखिर वो घड़ी आ गई द्वापर युग में कि हम अपने स्वरूप को भूल गए और खुद को शरीर मानने लगे। ये सबसे पहली भूल की। बाबा कहते हैं आप अहम को जो भूला तो लगा माया का गुला। मुरली में आता है ना? बाबा का ये महावाक्य आता है, अहम को जो भूला, खुद को जो भूला तो लगा माया का गुला। फिर भूले होने लगी, है ना? जो खुद को ही भूल जाएगा वो तो बाकी सब कुछ भूल गया है ना, न पिता को, न घर को, न स्वधर्म को, न स्वलक्ष्य को, सब कुछ भूल गए। भूल पर भूल होने लगी। भूलों की परंपरा होने लगी और आखिर ड्रामा क्या बन गया? कलयुग में क्या कहते हैं संसार को? क्या कहते? भूल भुलैया का खेल बन गया। पूरा ड्रामा ही भूल भुलैया का खेल हो गया। इतनी भूले हुई कि लोग कहने लगे संसार क्या है? भूल भुलैया का खेल है। अब बाबा आए हैं अभूल बनाने। फिर बाबा किस लिए आए हैं? अभूल बनाने कि अब कोई भूले ना हो, पाप ना हो, गलतियां ना हो। और उसके लिए देखो बाबा क्या शिक्षा देते हैं, या कहो क्या सजा देते। दुनिया में भी कोई पाप करते हैं, गुनाह करते हैं, तो पहली सजा कौन सी देते हैं? जेल में बंद कर देते हैं, है ना? जिस समाज के बीच में रहकर, जिस वातावरण में रहकर व्यक्ति ने गुनाह किया, भूल की, पाप किए तो दुनियावी गवर्नमेंट भी क्या सजा देती है, उससे अलग कर देती है। जिस समाज संघ वातावरण में रहकर उसने भूलें की, उससे उनको अलग कर देते हैं, जेल में बंद कर देते हैं। तो बाबा ने भी पहली सजा कौन सी दी? जिस शरीर में रहकर, जिस देह और देह संबंधों में साथ रहकर हमने भूले की पाप किए, तो बाबा ने पहली सजा दी, इससे अलग हो जाओ। वही सजा दी ना, खुद को आत्मा समझना, माना देह भान से न्यारा रहना, ये पहली सजा है कि जिस शरीर के अभिमान में आकर तुम बच्चों ने भूले की पाप की, जिस देह को मेरा मेरा समझकर देह संबंधों में फंस कर भूले, तो उसके कारण ही हुई ना। तो बाबा ने पहला पुरुषार्थ कहो, पहली सजा कहो, वो यही दी है कि इससे अलग रहो, देह भान से न्यारे रहो। तो हमारा विशेष पुरुषार्थ यही है कि भल हर क्षण शरीर द्वारा कर्म करते हैं, हर क्षण शरीर द्वारा कर्म करते हैं, फिर भी बाबा ने कहा अपने को अलग आत्मा समझ। एक कॉलेज के प्रिंसिपल थे, सेंटर में आते थे, माना संपर्क में थे, विद्यार्थियों के कोई आंदोलन में उसको जेल में जाना पड़ा। फिर जब छूटकर वापस आए तो उनसे हमने पूछा कि आपको क्या सजा मिली, जो आपको लगा कि हमने जो भूल की उसकी ये सजा है, जेल में ऐसा क्या किया गया? उसने कहा हमें तो राजद्वारी जेल में रखा था, इसलिए कोई सजा, कोई ऐसा काम नहीं कराया, सब सुविधाएं थी, लेकिन सब कुछ होते हुए हर क्षण ये फीलिंग थी कि मेरा अपना कोई नहीं, मैं समझता हूं यही मेरे भूल की सजा थी। समझा बात को? हाँ। तो बाबा ने भी हमें ऐसी सूक्ष्म सजा दी है, हाँ, कि जिसको हम मेरा मेरा समझते, इंसान को सबसे ज्यादा अटैचमेंट किस में होता है? शरीर में, है ना? जिसको मेरा मेरा समझते थे, बल्कि खुद को ही शरीर समझ लिया, इतना अटैच हो गए कि खुद को शरीर ही समझ लिया, तो बाबा ने ये शिक्षा हम बच्चों को दी कि उनसे अलग हो जाओ, खुद को शरीर से अलग आत्मा समझना। क्योंकि सारी भौतिकता का जो बीज है वो क्या है, शरीर भान है। इसलिए मैं आत्मा हूं सिर्फ इतना नहीं, मैं शरीर से अलग आत्मा, ये डिटैचमेंट। क्योंकि आत्मा शरीर के द्वारा इस भौतिक संसार के आकर्षण में आती है। हम स्वयं तो निराकार है ना, ज्योति बिंदु है, ये साकारी शरीर है, शरीर व्यक्त है, आत्मा आत्मा अव्यक्त है। अव्यक्त स्थिति कहते हैं, अव्यक्त कौन है, आत्मा अव्यक्त है और शरीर व्यक्त है, प्रत्यक्ष है ना, स्थूल है। आत्मा शरीर द्वारा है ना, इस इतने बड़े भौतिक जगत के संपर्क में आत्मा कैसे आती है, शरीर द्वारा। इसलिए दुनिया से न्यारा बनाने के लिए बाबा ने सिंपल तरीका अपनाया कि शरीर भान से ही न्यारे हो जाओ। इस एक सत्य का ज्ञान ना होने के कारण भक्ति में बिचारे सारी दुनिया से अलग हो जाते है ना, वो संसार से ही अलग हो जाते। कहां हिमालय में, पर्वतों में, गुफाओं में लोग चले गए, वो सारी दुनिया से अलग हुए, पर देह भान नहीं मिटा। कितना वंडरफुल त्याग कष्ट कितना उन्होंने सहा कि पूरी दुनिया से अलग हो गए, गिरी कंदराओं में जाके जंगलों में रहे, पर इस एक सत्य का ज्ञान बाबा ने हमें दिया कि पूरी दुनिया से न्यारा होना है तो सिंपल तरीका है शरीर भान से न्यारे हो जाए। इसलिए हमारा मूल पुरुषार्थ यही है। बाबा कहते हैं ना, साकारी आकारी किसी को भी याद नहीं करना, भक्ति में तीन स्टेप कहते हैं, और वो भी कहते हैं कि स्थूल, सूक्ष्म और मूल, स्थूल भक्ति माना साकार में मूर्ति चित्र का आधार लेकर याद करना, उससे ऊपर है कि मन में आकार लाकर याद करना, वो सूक्ष्म भक्ति है। और मूल माना उस मूल परम शक्ति को याद करना। तो बाबा भी हम बच्चों को स्थूल से सूक्ष्म में और सूक्ष्म से मूल में लाते हैं। देखो पहले बाबा ने हमारे प्रैक्टिकल जीवन में परिवर्तन कराया ना, ब्राह्मण बनाए, हम मन वचन कर्म से शूद्र बन गए थे, तो बाबा ने सत्य ज्ञान दिया, हमारी बुद्धि में बैठा, हमारा तीसरा नेत्र खुला, हमने जीवन परिवर्तन किया, हम ब्राह्मण बने ना। फिर बाबा ने क्या लक्ष्य दिया? ब्राह्मण से फरिश्ता बन। ब्राह्मण जीवन इतना रिफाइन बनाना, ब्राह्मण जीवन इतना क्वालिटी बनाना और उसमें भी डिटैच रहना, तो फरिश्ता। और आखिर वापस असली घर और अपने मूल असली स्वरूप में, परमधाम में पहुंच जाना। बिंदु रूप कहते हैं, निराकार स्वरूप कहते हैं। पर पहला जो है, बाबा कहता है ना कि देहभान के कारण ही इंद्रिय रसों का आकर्षण होता है, देखने का रस, देखने का भी रस, सुनने का रस, क्या बात कर रहे हैं, सुनने का रस, देखने का रस, कोई आ रहा है, जा रहा है, आंखें घूम जाती हैं, देखने का रस, खाने का रस, स्वाद, इंद्रिय रस है ना ये सारे, बोलने का रस, कोई मिले, बात करें, बात करें, बोलने का रस। तो आत्मा जैसे ही अपने स्वरूप को भूलती है और शरीर भान में आती है, तो सबसे पहला इंद्रिय रसों का आकर्षण उत्पन्न होता है। फिर पदार्थ संबंध है ना, फिर और अटैचमेंट शुरू होते हैं ना, पोस्ट पोजीशन, जो कुछ प्राप्त करते हैं उसका अटैचमेंट। पर मूल दरवाजा कौन सा है? बाबा कहते हैं माया आने का दरवाजा कौन सा है? देहाभिमान, मैं और मेरा। बाबा कहते हैं ना बस वहां से ही अज्ञानता, विकार, कमजोरियां, तो ये सारा बाबा ने हम बच्चों को बताया है। और इसलिए ये इतना मुख्य पुरुषार्थ है कि अपने आप को देह भान से न्यारा समझना। अपने निराकार आत्मा स्वरूप की साधना करना। ब्रह्मा बाबा ने सबसे पहला पुरुषार्थ कौन सा किया? जीवन कहानी में पढ़ा है ना कि बाबा ने खुद भी आत्मा का पाठ पक्का किया, परिवार को भी आत्मा का पाठ पक्का करा है। पता है ना, बाबा लिखते थे, बाबा लिखते थे ना, मैं आत्मा हूँ, जसोदा आत्मा है, राधा आत्मा है, नारायण आत्मा है। बाबा पाठ पक्का करते थे कि ये बेटा नहीं है, ये आत्मा है, ये पत्नी नहीं, ये आत्मा है, ये पुत्र वधु नहीं, आत्मा है, ये लिखते थे। क्योंकि रूहानी से जिस्मानी बनना, देहाभिमानी बनना, आध्यात्मिक से भौतिक बनना, शुद्ध आत्मा से पतित बनना, उसका मूल कारण ही ये है कि हम देह भान में फंस गए। इसलिए ब्राह्मण जीवन की शुरुआत से लेकर अंत तक, संपूर्ण बने तब तक मुख्य पुरुषार्थ कौन सा करना है हमें? ये पुरुष, मैं आत्मा हूं, अलग। क्योंकि पूरी दुनिया भौतिक है ना, आप जो कुछ देख रहे हैं वो क्या है? जो कुछ देख रहे हैं वो क्या है? भौतिक है। पांच तत्व से जो बना है वही दिख रहा है। आत्मा तो नहीं दिखती है ना, और बाबा दिखता है? हाँ, शिव बाबा दिखता है? नहीं ना, वो भी निराकार दिव्य दृष्टि से ही दिखते हैं ना। तो जो कुछ दिख रहा है वो तो क्या है? भौतिक, प्राकृतिक तत्वों से बना हुआ है। मैं तत्व से अलग, चैतन्य हूं शक्ति, ये है निराकार बनने का पुरुषार्थ। इसलिए बाबा मुरली में भी कहते हैं, बच्चे ये अभ्यास करो, कानों द्वारा मैं सुन रही, मुख द्वारा मैं आत्मा बोल रही, ये मन ही मन याद रखना है, मैं भी आत्मा हूं, ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है। बाबा कहते ना, अंदर अंदर मन में ये पाठ पक्का कर, आत्माभिमानी स्थिति होंगी तो बैड फीलिंग नहीं आएगी। बैड फीलिंग समझते हैं ना, हम कहते हैं ना मुझे बहुत बुरा लग गया, ऐसे कहते, उसने ऐसा बोला मुझे बुरा लग गया, मुझे खराब लगा, इसको बैड फीलिंग है। देह भान में होते हैं तो ये फीलिंग्स आती है। अगर हमारी आत्माभिमानी स्थिति है तो हम अपनी अलौकिकता स्वमान में रहते, दादियां कहती हैं कि शुरू में यज्ञ में हम जब थे हमें घंटों बाबा तपस्या में बिठाते थे वे, और एक ही संकल्प में स्थित होते थे कि मैं शुद्ध आत्मा, कहते हमें इतना देह भान से न्यारा अपने शुद्ध स्वरूप में रहने का अभ्यास होता था कि हम बड़े बड़े हॉल में रहते थे साथ, पहले यज्ञ में भी तो बड़े बड़े हॉल ही थे ना, शांतिवन में भी तो बड़े बड़े हॉल थे रहने के लिए, तो सुबह स्नान करने जाते हैं तो दरवाजा खटखटाते हैं ना, भाई जल्दी निकलो जल्दी निकलो। हाँ, बहुत बड़ा संगठन होता है तो ये होता है ना, तो दादियां कहती हम ऐसे दरवाजा खटखटाते थे कि भी कब निकलेगी, कहते इतना हम डिटैच रहने का अभ्यास होता था, जब हम पूछते थे कब निकलेगी, माना बाथरूम से कब निकलेगी, तो जवाब देते थे जब शरीर छूटेगा तब निकले। समझा? कि जब शरीर छूटेगा तब निकलूंगी, माना इतना आत्मा के नशे में रहते थे। बाबा की मदद भी और उन आत्माओं को वो पावर, कहते ऐसा न्यारा हम घंटों बैठे रहते थे तपस्या, तपस्या में कुछ और थोड़ी था, और ये सब बाबा ने शुरू में क्यों किया था, बाबा कहते ना 7 दिन की भट्टी, किसी से मिलना नहीं, पत्र लिखना नहीं, देहधारी की याद आई तो वापस 7 दिन ऐसी भट्टी होती थी। हमारी भट्टी कोई भट्टी थोड़ी है, हमारी तो सहज है ना। दादियां बताती है कि अगर कोई देहधारी की याद आई तो वापस 7 दिन माना आत्माभिमानी स्थिति की नींव इतनी बाबा ने पक्की कराई जो दादियां सेवा के क्षेत्र में गई और पूरा जीवन कितने लोगों के संपर्क में आए सेवा में, पर इस एक फाउंडेशन के कारण कहीं भी फंसे रही। कोई देहधारी मन में आया नहीं और ये चीज मैंने बहुत ऑब्जर्व की दादियों में, क्योंकि मधुबन में रहने का सौभाग्य मिला और दादियों के संग सेवा का सौभाग्य मिला तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि इनकी जो आत्माभिमानी स्थिति की नींव है वो बहुत पक्की, जिसके कारण बहुत जल्दी अपने आप को समेट लेते हैं। आप देखो कितना वैरायटी सेवा में। मैं देखती थी अभी अभी दादी क्लास अमृतवेला योग के बाद तैयार होती थी और उस समय भी कितने डिपार्टमेंट वाले आते थे, पूछते थे दादी आज ये खरीदी के लिए जा रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ, वो जा रहा हूँ, फिर मुरली सुनाएगी, फिर आएंगी, फिर कोई ना कोई डिपार्टमेंट का कारोबार, नाश्ता, फिर पर्सनल में मिलने वाले, फिर क्लास, सौगात, माना इतना वैरायटी रोल्स प्ले करते थे। पर योग में सेकंड में समेट लेते, बाबा कहते हैं कछुआ बन जाना, सेकंड में समेट लेते। और दूसरा एक मैंने देखा कि हम समझते हैं ना कि भाई हमारी दादी हमारी दादी, पर दादी को पक्का क्या था, मैं एक बाबा की। हम समझते मेरी दादी मेरी दादी मेरी दादी, पर दादी क्या समझती है, मैं एक बाबा की। इतना पक्का ये पाठ कि इनके पूरे जीवन में सब दादियों में ये देखा मैंने, कोई देहधारी उनके मन में नहीं आए, ये कितनी बड़ी सिद्धि है। योगी जीवन की वास्तविक सिद्धि तो ये है ना, एक तो हमारी दैहिक दृष्टि ना हो, हमारे इस ब्राह्मण जीवन की सिद्धि क्या है कि हमारी दैहिक दृष्टि ना हो, रूहानी दृष्टि, कहीं हमारी बुद्धि और नजर डूबे नहीं, फंसे रहे। और हमारी बुद्धि में कोई देहधारी प्रवेश नहीं करे। बताया ना सीता को कि इस लक्ष्मण रेखा के अंदर कोई आवे नहीं और तुम बाहर जाएंगी रे। मन के अंदर कोई प्रवेश न करे एक बाबा। इसलिए बाबा ने सबसे पहली बात अंतिम सार में बताई निराकारी भव। जितना देह भान से डिटैच रहेंगे देहधारियों से भी आप न्यारे रहे और परिस्थितियों में साक्षी रहे। परिस्थितियां आवे तब साक्षी रहकर उस परिस्थिति को देख सके, ऑब्जर्व कर सके। हलचल में ना आवे, फंसे नहीं, हम अचल तब रह सकेंगे जब साक्षी बने। उसके लिए रोज प्रैक्टिस चाहिए कि मैं इससे अलग हूं। न्यारा बाबा ने दो शब्द हमें कहे हैं ना, न्यारा और प्यारा। तो देह भान से न्यारा, न्यारा देह भान से न्यारा। न्यारा माना ये नहीं किसी से मिले नहीं, बात नहीं करे, अलग अलग रहे, नहीं, देह भान से न्यारा। और बाबा का प्यारा, बाबा का प्यारा, कि एक बाबा से सच्चा प्यार इन दो बातों पर सदा हमें ध्यान देना। सुनने में सिंपल लगता है ना कि बाबा को याद करना है, पर बिना प्यार याद नहीं आएगी। इसलिए ये हमारे योगी जीवन का फाउंडेशन, भोगी बने ही इसलिए कि देह भान से न्यारे नहीं रहे, देह अभिमानी बन गए। फिर व्यक्ति से, वैभव से, संबंध से, सब में अटैचमेंट आत्मा को आने लगे। और इस अभ्यास से इतना न्यारापन आएगा कि आसक्ति भी नहीं, नफरत भी नहीं। बाबा कहते हैं जो नफरत करते हैं वो भी अटैच है, negatively attached. जिससे नफरत है वो भी बार बार बुद्धि में आएगा. आत्माभिमानी आत्मा दोनों बात से न्यारा रहे. तो निर्विकारी बनने का सही पुरुषार्थ चलेगा. हम निर्विकारी बनना चाहते हैं ना, कि मुझ आत्मा में कोई विकार न रहे. कोई भी विकार का अंश न रहे. थोड़ा बहुत विजयी बनना चाहते हैं या पूरा विजयी बनना चाहते हैं? क्या लक्ष्य है? पूरा पीछे वालों का हाँ पूरा विजयी बनना है ना, कि अंश रखना है हमें. बाबा कहते हैं ना, अंश होगा तो वंश उग जाएगा. हम देवता बन रहे हैं, उसकी एक महिमा क्या है? संपूर्ण निर्विकारी. कोई भी विकार का अंश ना हो. कर्म में विजयी तो बाबा के बनते ही बन गए. बाबा के सत्य ज्ञान की शक्ति इतनी है कि ज्ञान में आते ही कर्म में ब्रह्मचर्य धारण हुआ. महाशत्रु को गिरा दिया ना. कर्म में ब्रह्मचर्य है और पवित्रता आने से फिर बाबा कहते हैं कर्म में क्रोध नहीं आता है. गुस्से में आकर हाथ चलाना तो ये कर्म में आ गया ना. हम ब्राह्मणों में इतनी तो शक्ति आ जानी चाहिए कि कर्म में विकार ना आवे. बाबा भी मुरली में कहते हैं ना, मनसा में कितना भी तूफान चले कर्मेंद्रिय से पाप नहीं करना. साकार मुरली में आता है ना. हाँ आता है. इतना संयम इतना कंट्रोल हम आत्माओं में होना चाहिए. अगर हम ज्ञानी तो आत्मा है, नित्य पुरुषार्थी आत्मा है, कर्मेंद्रिय से पाप नहीं करना तो हम सूक्ष्म के पुरुषार्थी बन सकते. बाबा कहते हैं मेरे बनने के बाद जो काम वासना के वश होता है वो आत्मभिमानी बन नहीं सकता है. वो पहला पाठ ही नहीं पढ़ सकता है. वो इस पढ़ाई में आगे कदम ही नहीं बढ़ा सकता है, क्योंकि हमारा पहला पाठ कौन सा है? देह भान को भूलना. देह से न्यारा आत्माभिमानी बन. इसलिए ज्ञान में आने के बाद बाबा कहता है कोई ब्रह्मचर्य तोड़ते हैं काम वासना के वश होते हैं तो बाबा कहते हैं उनके हड़गुड़ टूट जाते हैं, वो उठ नहीं सकते हैं। फिर बाबा कहते हैं चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस और गिरे तो, वो गिरना किसको कहते हैं? ब्रह्मचर्य को तोड़ना। हमारा कदम आगे बढ़ ही नहीं सकता है, हम आत्मभिमानी बन नहीं सकते। इसलिए पवित्रता फाउंडेशन, कोई थोड़ा भी देहधारी में फंसता है, डायरेक्ट असर कहां आता है? योग पर, उसका योग ही टूट जाएगा। ज्ञान तो तोते मुआफिक देगा, सेवा भी करेगा, पर योग नहीं लगेगा, वो देहधारी ही याद आएगा। इसलिए निराकारी बन, निराकार को याद करना है। बाबा से सर्व संबंध हम क्यों कहते हैं? क्योंकि तभी हम निराकारी बन सकते हैं। ब्राह्मण बनकर गुस्सा करते रहते हैं तो आत्माओं का प्यार नहीं मिलेगा, ईश्वरीय परिवार का प्यार नहीं मिलेगा। हर कोई कहेगा हम अकेले सेवा कर लेंगे, हम इनके साथ सेवा नहीं करेंगे, ये बहुत गुस्सा करते। उनको ईश्वरीय परिवार का प्यार नहीं मिलेगा, सब उनसे दूर हो जाएंगे। घर में भी पापा गुस्सा करेगा, घर में आएंगे बच्चे दूसरे कमरे में चले जाएंगे। क्योंकि भाई गुस्सा करते हैं, वो घर में आएंगे और घर वाले दूसरे कमरे में जाएंगे। गुस्सा कैसे कर सकते हैं, है ना? किसी पर गुस्सा करना माना हम उस पर अधिकार समझ रहे और अपने आप को उनसे सुपीरियर समझ रहे हैं, तब तो गुस्सा करते हैं। अब किसका किस पर अधिकार है? हर एक आत्मा बाबा से जुड़ी है, हम आपस में नहीं जुड़े हैं, और हर आत्मा महान है। ब्राह्मण बनकर लोभ लालच करते हैं, वे भाग्य नहीं बना सकते। धन होते हुए भाग्य नहीं बनेगा, क्योंकि लोभ के कारण छूटेगा नहीं, वो सेवा नहीं कर सके। जो मोह में फंसे रहते हैं बाबा के बनने के बाद भी, कोई ना कोई देह संबंध के मोह में रहते हैं कि मुझे मम्मी से बहुत मोह है, बेटे से मोह है, एक्स वाई जेड। बाबा कहते हैं जो मोह में फंसे रहते हैं वो भगवान का प्यार नहीं पा सकते। क्या फायदा है बताओ? हाँ, मोह के कारण बुद्धिवाई फंसी रहेगी, ऊपर उड़ेगी नहीं। और जिस बात का अभिमान आया, बाबा कहते हैं जहां अभिमान आया वहां पतन शुरू हो गया, गिरना शुरू हो गया। अभिमान आ गया ना, वो गुण अवगुण हो जाएगा। इसलिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, कोई भी विकार का अंश भी न रहे, है ना। मुझे पूर्ण शुद्ध आत्मा बनना, आलस्य, बाबा कहते हैं ना छठा विकार है, छोटा है पर खतरनाक। भगवान मिलने के बाद भी आलस्य के कारण कुछ भी प्राप्त नहीं करे, क्योंकि ना अमृत वेला उठेंगे ना क्लास में जाएंगे, आलस्य के कारण सब कुछ गंवा देंगे। आलस्य अलबेलापन बाबा कहता है ना, अलबेला वही है जो ज्ञान के गहरे राजों को समझा दे। जिसने समय को पहचान लिया, बाबा को पहचान लिया, अपने आप को पहचान लिया, वो अलबेला रह नहीं सकता। अलबेला मीन्स उसने गहराई से समझा ही नहीं है कुछ, तभी वो अलबेला है। अलबेला माने समझते हैं ना, केयरलेस, करेंगे देखेंगे हो जाएगा ऐसा, वो केयरलेस। तो लक्ष्य चाहिए, मुझे संपूर्ण निर्विकारी रहना, और ऐसा अच्छा पुरुषार्थी बनने के बाद भी अभिमान नहीं आना चाहिए, निरंकारी। कई बाबा के बहुत अच्छे बच्चे, सब धारणाएं, अच्छे पुरुषार्थी, अच्छे सर्विस सेवर, अच्छे जिम्मेवार, अच्छे सहयोगी, पर अभिमान नहीं आना चाहिए। बाबा कहते हैं ना, महारथी बन जाओ, अनन्य बन जाओ, मुख्य बन जाओ, निमित्त बन जाओ, तो भी सावधान, अभिमान नहीं करना है। बनाना बनाने वाला बाबा है। निमित्त भाव रहे, निर्माणता रहे, कहते हैं ना जितना महान बनते हैं उतना वो निर्माण होते। अभिमान, मिथ्या ज्ञानी को अभिमान आता है, समझा? मिथ्या ज्ञानी को अभिमान आता है, सत्य ज्ञानी निर्माण बनता है। वाणी में भी नम्रता, निरंकारिता, अंत तक बनाने वाला बाबा है। तो ये तीन अनमोल रतन जो बाबा ने दिए हैं अपनी संपूर्णता की स्थिति से हमें उसका स्व में भी चेकिंग करना है, अटेंशन देना है। ओम शांति। कुछ सार रूप अभ्यास हम करेंगे, अंडरलाइन करेंगे वो बातें। दो मिनट खड़े हो जाइए सभी, हाथ पांव ठीक कर ले, कमर ठीक कर लो, हाथ पांव स्ट्रेच कर लो। हाथ ऊपर खींचो, छत को हाथ लगाओ, लगाओ 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 लगाओ। कमर सीधी करो। दौड़ो, खड़े खड़े दौड़ो अपने स्थान पर। दौड़ो दौड़ो, तुम तो छोटा है, है? ठीक। कुछ अभ्यास खड़े खड़े करेंगे। पहला अभ्यास, मूल रूप से अपने असली स्वरूप से मैं निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हूं। Point of light and might, इस दुनिया में, इस भौतिक जगत में आकर शरीर धारण करते हैं, शरीर रूपी ड्रेस पहनते हैं, मैं असली स्वरूप में। शुद्ध सत्य पवित्र आत्मा आनंद स्वरूप मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। निज प्रकाश स्वरूपम, निज ज्ञान स्वरूपम मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। मुझ बिंदु आत्मा में सारी शक्तियाँ, अनुभूतियाँ समाई हुई है। मैं एक ज्योति चैतन्य शक्ति, शरीर तो तत्व है, मिट्टी है, स्थूल है। मैं आत्मा सूक्ष्म हूँ, ज्योति हूँ, चैतन्य। राइट साइड घूम जाए, मैं निराकार आत्मा, निराकार बाबा की हूँ। ड्रामा में आए तो विस्तार में चले गए, चौरासी के चक्कर में अनेक आत्माओं के संबंधों के विस्तार में आए। अब ड्रामा का चक्र पूरा हो रहा है, वापस घर चलना है, सार में स्थित हो जाना है। जीवन का सत्य सार, मैं शुद्ध आत्मा, मेरा एक बाबा, राइट साइड घूम जाए, मैं परम पवित्र सदा पावन बाबा की संतान, मैं आत्मा भी आदि अनादि पवित्र दिव्य आत्मा, मेरा असली स्वरूप, असली पिता, सत्यम शिवम सुंदर, मुझे सत्य पवित्र कल्याणकारी बनना है। राइट साइड घूम जाए, चौथा अभ्यास, बाबा करण करावन हार, मुझ निमित्त आत्मा से विश्व कल्याण का कार्य करा रहे हैं, हम निमित्त हैं, माध्यम हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं, बाबा मुझ निमित आत्मा से कराते हैं राइट साइड घूम जाए मेरा जिगरी लक्ष्य है बाबा जैसा बनना है बाप समान संपन्न और संपूर्ण अपने चलन और चेहरे से अपने जीवन से अपने हर कर्म से प्यारे बाप दादा को प्रत्यक्ष करना है स्वयं लाइट पॉइंट ऑफ लाइट मैं चैतन्य शक्ति ज्योति बिंदु इस शरीर में हूँ। मेरी लाइट माइट से शरीर भी चमक रहा है। चेतना वाला है, चैतन्य चमकता सितारा आत्मा, प्यारे बाबा ने अपना बनाकर डबल लाइट बना दिया। मैं डबल लाइट हूँ, पापों के अवज्ञाओं के बोझ से मुक्त हल्की डबल लाइट आत्मा। अब इस जीवन में छिपाने जैसा कोई कर्म नहीं, दिल खाए ऐसा कोई कर्म नहीं, योगी जीवन पारदर्शी जीवन। मैं डबल लाइट लाइट के आकार में point of light. चमकीली फरिश्ता ड्रेस में चमकता ज्योति बिंदु मैं आत्मा लाइट के वतन में संपूर्ण कर्मातीत अव्यक्त बाप दादा के संग मैं अव्यक्त फरिश्ता वतन से ही विश्व की आत्माओं को लाइट माइट की किरणें देने वाली मैं सूक्ष्म सेवाधारी सरिष्ठा चैतन्य लाइट हाउस माइट हाउस बन अलौकिक अनुभूतियों की किरणें फैला असली घर में असली स्वरूप में असली पिता के पास पहुंच ज्योतिर्धाम में परम ज्योति के सानिध्य में दिव्य ज्योति मैं आत्मा
नमः शाम के समय बहुत ही सुंदर अनुभूतियों में एकाग्रता से सभी ने अपनी उच्च स्थिति का अनुभव किया। आगे भी बहुत सुंदर तीनों शब्दों को स्पष्ट करते हुए अनुभव का क्लास भी सुना जो सबके दिल में उतर गया होगा। सदा उसी स्थिति को उसी बातों को याद करते हुए अपने अपने स्थानों पर भी यह अभ्यास चालू रखेंगे। बहुत अच्छा सभी को स्पष्टीकरण मिला है। सार रूप में तीन शब्द आपने बहुत अच्छी तरह से गुह्यता से सबके सामने रखे। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। एक हाथ की ताली से बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करते हैं। सदा आपकी बातों को हम साथ में रखेंगे। मुख वाइब्रेशन से आप पहुंचाते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।